अब आज इस समाचार के साथ हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं सारे संसार में भाई फ्रैंक के साथ, और खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं कि हम खुदावन के प्रकाशित मकाशवा भरे हुए कलाम को सुन सकते हैं और अपने आप को तैयारी बख सकते हैं खुदावन यीशु मसीह की आमद के लिए। और प्रभु खुदावन भाई फ्रैंक को बहुत आशीष दे और उसको अपनी आत्मा से भरे, जिससे कि खुदावन के कलाम को वो प्रचार कर सके। इससे पहले कि भाई फ्रैंक हमसे बात करें, और मैं शुरुआत में एक वचन कलाम पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 22वीं आयत, पहला पत्रस 1:22। अतः जब तुमने भाईचारे की निष्कपटित प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन और मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक 24वीं आयत, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, पर प्रभु का वचन युगानुयुग यानी कि हमेशा हमेशा तक स्थिर रहता है, कायम रहता है। यही वो सुसमाचार है जो तुम्हें सुनाया गया। यहां तक खुदा का भाई फ्रैंक, खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो और इस अद्भुत और अलौकिक वचन के लिए, कलाम के लिए। सब कुछ इन आयतों के अंदर बयान कर दिया गया, और खुदावन ऐसा अनुग्रह होने दे कि ये हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में सच्चाई बन जाए, कि हम एक नए जीवन में, नई जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि खुदावन के कलाम के बोए हुए बीज के द्वारा। और हम इस चीज को मान सकें और जान सकें कि अब हम वही कलाम, वही वचन प्रचार कर रहे हैं जैसा कि प्रेरितों के द्वारा, रसूलों के द्वारा शुरुआत में प्रीच किया गया था। और हम खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं उस अनुग्रह और उस फजल के लिए कि हम इस चीज को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उस समय को जिसमें हम अब रह रहे हैं। और अब हम सब जानते हैं कि हमारे खुदावन ने क्या बताया था, उसने क्या बताया था कि क्या होगा, उसके आमद से पहले क्या होगा। और हम देख सकते हैं, हम अपने आंखों से इस बात को देख सकते हैं, और हम उस कलाम को, इन वचनों को देख सकते हैं जो हमारे आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। और सब कुछ, बहुत कुछ बदल चुका है, सिर्फ ये नहीं कि वातावरण या दुनिया में गर्मी बढ़ रही है या मुसीबतें और पीड़ा आ रहा है। हर रोज एक एक नई नई बात हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि संसार में क्या हो रहा है। और हमें बड़ा अचंभा होगा कि हम पर क्या और कुछ समय में क्या होने वाला है। पर प्रभु जानता है, प्रभु ने सब कुछ बता दिया अपने लोगों को कि जब तुम ये सारी चीजों को होता हुआ देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी नजात बिल्कुल नजदीक है। और मेरे भाई और बहनों, मैं ये भूलना नहीं चाहता, कहना चाहता हूं कि बहुत तेरे लोगों ने आज ग्रीटिंग्स भेजे हैं, जैसा जैसा कि हम पहले से बता रहे थे, जाते थे, चाहे भरा मिलो हो बाल्टिक सी से, और जो सारे भाई इधर और उधर सब जगह पाए जाते हैं। और मैं मुझे कहा गया कि मैं बरेली इंडिया से संगीता दास की ओर से मुझे कहा गया कि मैं ग्रीटिंग दूं। उनके फादर, उनके पिता जो थे वो इंडिया में मेरे जो संदेश को, इस संदेश को उन्होंने सुना और वहां की सारी कलीसिया भी ग्रीटिंग्स भेज रही है। और अगर कोई ग्रीटिंग्स भेज रहा है, क्योंकि क्योंकि तब तो बहुत सारी ग्रीटिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, पर हम कहते हैं, हम आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बताना चाहते हैं, हम अपने दिल से ये बता रहे हैं कि हर एक देश में, हर एक वतन में और हर एक जुबान में, हर जगह पर खुदावंद यीशु के नाम में आपको आशीष और बरकत मिलती रहे, खुदावंद की बरकत आपको मिलती रहे। और खुदावंद हमारी समझ को खोले, जिससे कि ये कलाम पूरा हो सके, जिससे कि हम इस बात को समझ सकें, जान जाएं कि हम खुदावंद के आमद के कितने नजदीक आ पहुंचे हैं। और हम ये देखते हैं और हम कह सकते हैं कि सिर्फ वो जिनको खुदावंद का फजल हासिल है, अनुग्रह हासिल है, और उसके वादों को, वचनों पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, वही इसका एहसास कर पाएंगे, कि वही इस बात को जान पाएंगे कि कल वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार अब क्या चल रहा है। मैं ये बड़े दुख के साथ कहता हूं कि और हम रैप्चर के बारे में लिख तो सकते हैं, एक बहुत बड़ा आर्टिकल रैप्चर के बारे में, और बड़े संप्रदाय जो डिनोमिनेशन है वो भी रैप्चर में विश्वास करते हैं, खुदावंद की आमद के बारे में ईमान तो रखते हैं, पर वो उस वादे से और उन वादों के बारे से वो बिल्कुल दूर हैं, उनको उसका कोई एहसास नहीं है कि इस वक्त क्या चल रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरीके से खुदावंद की पहली आमद पर हुआ था। और हम इस बात को देख सकते हैं कि देखिए कलाम क्या कहता है। हम यहां पढ़ते हैं, हम लूका 19 और 41 और 42 आयत को हम पढ़ते हैं। लूका 19, 41, 42। लूका 19, 41 और 42। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, पर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। और जिससे दुख पहुंचता है। पहले आप देखिए कि कितना बड़ा एक अनोखा, जकरिया 9 में कितना एक अद्भुत बात है, कितनी बड़ी, कितना बड़ा वादा वहां पूरा हुआ कि देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है और वो गधी के बच्चे पर सवार है और एक छोटा छोटी भीड़ उसके साथ चल रही थी, वो खुश हो गई और उसके नाम को ऊंचा करने लगी। पर जो महायाजक लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो नाराज हो गए और उनके चेलों को कहा गया कि वो खामोश रहें। पर वो कैसे खामोश रहते, कैसे रहते वो खामोश मेरे भाइयों और बहनों? सिर्फ वो जो खुदावन के हैं वो जानेंगे कि क्या बोला गया है और क्या कहा गया है और क्या चल रहा है। आज भी यहूदी लोग एलिया का इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आने से पहले, मसीहा आने से पहले एलिया आना है, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। और देखिए पासओवर में एक 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 कप में वाइन रखी जाती है और एक कुर्सी अलग से रखी जाती है, इसलिए कि जब एलिया आएगा तो क्या होगा। और उस वक्त क्या हुआ जब हमारा खुदावंद आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो तो एलिया की सेविकाई, खिदमत और आत्मा में आया। ये वो वादा किया हुआ नबी था, भविष्यवक्ता था। और हमारे खुदावन ने इस बात को दोहराया और कहा, साफ साफ कहा इस वादे के बारे में, मत्ती 17 में यीशु ने साफ कहा कि एलिया तो पहले आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा। हमारे खुदावन ने कहा। और मेरे भाई और बहनों, ये वो बात है, ये वो वादा है जो हमारे वक्त के लिए है। और ये उस वक्त का वादा है कि खुदावन ये बिल्कुल देखेगा कि मलाकी 3 और उसके पहली आयत पूरी हो और जो पितरों के मन है, बुजुर्गों के मन जो है, वो जो नए अहद के जो बच्चे हैं उनकी तरफ फिरेंगे। और मलाकी 3 आखिरी आयतें, पर अब देखिए, अब वो जो खुदावन के बच्चे हैं उनके जो मन है वो वापस उन बुजुर्गों की तरफ, जो बुजुर्ग उस वक्त शुरुआत में थे उनकी तरफ फिर जाए, जो हमारे रसूल थे, जो रसूल थे और जो बुजुर्ग थे उनकी तरफ हमारे मन फिर जाए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब आप बड़े बड़े आर्टिकल अपने सामने देखते हैं रैप्चर के बारे में और कौन कौन उसके हकदार होंगे, शामिल होंगे, और एक दफा भी ये नहीं कहा गया कि क्या प्रॉमिस है, क्या वादा है, खुदावन ने क्या वादा अपने कलाम में किया। वो सिर्फ अपने अपने विचार, अपने 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 जहन से निकली हुई बातों को लिख रहे हैं, अपने विचारों को लिख रहे हैं। इससे किसको फायदा पहुंचेगा, कौन इससे फायदा पाएगा? और इसीलिए कहा गया कि हर एक सरमन में ये कहा जाता है, जैसा कि खुदावन की पहली आमद के बारे में था, खुदावन ने अपने नबी को भेजा कि वो आकर के जगह तैयार करे और वो मुकाम तैयार करे। इसी तरीके से खुदावन ने ऐसी हिदायत दी हमारे भाई ब्रैनम को भी, उसने समझाया, बताया, हिदायत दी कि जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदावन की पहली आमद की तैयारी के लिए भेजा गया था, उसी तरीके से तुमको भी एक मैसेज, यानी कि एक संदेश, और तुमको भी एक कलाम दिया गया है जो खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। और ये बिल्कुल ऐसा है, खुदावंद यूं फरमाता है और ये सच्चाई है कि एलिया तो पहले आएगा और हर चीज की बहाली करेगा। और और भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के द्वारा सारी शिक्षा, सारा प्रकाशन, सारा मकाशफा, सारा का सारा कलाम खुदावंद के कलाम का हमारे ऊपर नाजिल कर दिया गया और उस दीपदान पर रख दिया गया और खुदावंद खुदा के बारे में पुराने और जो असली गुनाह था, जो आदम की वाटिका में क्या गुनाह हुआ था और जो बाइबल के अनुसार क्या बपतिस्मा है और एक ही बार पानी में डुबाया जाना है प्रभु यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह के नाम में। और इस भाई के लिए इसका क्या इस्तेमाल है जो जो बाइबल के बपतिस्मे को रिजेक्ट करता है, नकारता है, ये चीजें उसके लिए क्या माने रखती हैं, क्या फायदा पहुंचाएंगी? जो तीन व्यक्तित्वों में, तीन खुदा के तीन पर्सन में बिलीव करता है और ऐसे भाई के लिए ये रैप्चर के बारे में जब ऐसा भाई लिख रहा है तो उसका क्या मतलब है? और देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कलाम जो है, खुदावन जो है, खुदावन खुदावन रोया और बड़ा रोया, खुदावन बहुत जोर से रोया और कहा यरूशलेम से कि अगर कि वो छोटी सी जो भीड़ थी उसके साथ थी जिन्होंने के खुदावन की, खुदावन के भेजे हुए नबी की मिनिस्ट्री को यूहन्ना बपतिस्मे देने को स्वीकार किया था कि वो खुदावन की आमद के लिए नया, खुदावन की आमद के लिए रास्ता तैयार करेगा। इसीलिए ऐसा हुआ कि वो इस बात में खुश हुए। पर जो महायाजक थे, जो फरीसी थे, उनका क्या हुआ? जो के मसीहा के आने की इंतजार तो कर रहे थे कि मसीहा आएगा और एलिया आएगा, पर खुदावन ने उस पहाड़ से, खुदावन रोया और उसने कहा ओ यरूशलेम, हे यरूशलेम, कि तूने अपने वक्त में, तेरा जो वक्त था वो जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे कि अपने वक्त में कि तुम को ये पता होना चाहिए था, तुमको ये जानना चाहिए था कि तुम्हारे लिए क्या मुकर्रर है, पर अब तो ये तुम्हारी आंखों से छुपा लिया गया है। इससे बड़ा दुख होता है, चोट पहुंचती है और इससे इतना दुख पहुंचता है कि सब कोई इस बात को छोड़ जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, इस बात से परे रह जाते हैं कि खुदावंद आज क्या कर रहा है, क्योंकि वो खुदावंद के किए हुए वादे पर ईमान नहीं रखते। और ये वादा था कि मैं उद्धार के आखिरियत से पहले एक नबी को भेजूंगा, जिससे कि इससे पहले कि खुदावंद का बड़ा और भयानक दिन आ जाए, जिससे कि हमारे मन, हमारे दिमाग नहीं, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क नहीं, बल्कि हमारे दिल खुदावंद के तरफ फिर जाएं और उसके कलाम की तरफ फिर जाएं और बाइबल की शिक्षा पर जुड़ जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हर बार ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया जो है, जिंदा खुदावंद की जो कलीसिया है, ये खुदावंद के सच्चे कलाम, खुदावंद के सच्चे कलाम के ऊपर टिकी हुई है और खुदावंद के कलाम में कोई भी गलत बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं पाया जाता है। ये तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है, यही वो असली शिक्षा है जो प्रभु की ओर से है। मैं ये फिर कहना चाहता हूं एक बार फिर, हम जानते हैं कि खुदावंद का कलाम, चाहे वो यूहन्ना में हो, चाहे वो मुकाशवा में हो, पर बाइबल ये बताती है कि बाइबल जो है वो एंटी क्राइस्ट के भाई, यानी मुखालफ मसीह के बारे में बताती है और बताती है कि ये तो दुनिया में गए हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मुखालफत का जो वर्ड है, विपरीत का जो वर्ड है, उसका पता होना चाहिए कि वो कलाम के अगेंस्ट है, जिससे कोई भी शिक्षा जो खुदावन की शिक्षा के खिलाफ हो, बरखिलाफ हो, वो है एंटी क्रिश्चियन, वो है मसीहत के खिलाफ, वो है मुखालफ मसीह। हम अपने आप को चाहे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, लूथरन कुछ भी कहते रहे, पेंटिकॉस्टल कहते रहे, हम अपने आप को जो भी चाहे हम अपने आप को कहते रहे, चाहे कोई भी शिक्षा हो, पर कोई भी शिक्षा जो इस शिक्षा के विपरीत है, खिलाफ है, वो मुखालफत में है, ये वही है जो एंटी क्रिश्चियन, मुखालफ मसीहत और मुखालफ मसीह है। इसीलिए खुदा ने इस बात का ध्यान रखा, इस बात की केयर करी कि हमारे वक्त में कि हम सब, कि हम सारे संप्रदायों से, सारे फिरकों से निकल करके और सारे अकीदों से निकल करके, सारे धर्मों से निकल करके, हम उस शुरुआत की शिक्षा और उस तालीम में वापस आ जाएं, जिससे पहले के हमारा खुदावंद आ जाए। और हर बात की बहाली होनी चाहिए, हर बात उस मुकाम पर वापस आनी चाहिए जिस पर कलीसिया शुरुआत में थी। और इसी तरीके से सिर्फ खुदावन इसी तरीके से अपने काम को पूरा करेगा और एक बड़ी शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और कुव्वत वाले काम को अपनी कलीसिया में करेगा। हम खुदावन के प्यार के बारे में भी बात करते हैं कि हम क्या, हमें सच्चाई से प्यार है, ये बहुत जरूरी है। क्या हम किस चीज से प्रेम करते हैं, क्या हम अपनी शिक्षाओं से, अपनी तालीमों से प्यार करते हैं, या जो हमारी कलीसिया हमें सिखाती है, या कलीसिया की शिक्षा हमें सिखाती है, क्या किस चीज से हम मोहब्बत करते हैं? हम खुदावन के कलाम से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, अपने मन से, अपनी सारे मन से, अपनी जान से, अपनी आत्मा से और अपनी सारी सामर्थ्य से हमें प्रभु से, प्रभु के वचन से प्यार करते हैं। हमको पूरी तरीके से उस एकता में आ जाना है, उस एके में आ जाना है, उस अंडरस्टैंडिंग में आ जाना है, तब पाक रूह जो हमारे को प्रभावित करती है, तब वो हमको बताती है और सिखाती है वो सारी सच्चाई को जो कि खुदा का कलाम है। और कोई भी झूठ, और यूहन्ना रसूल इस तरीके से कहता है कि कोई भी जो झूठ है वो सच से निकल कर नहीं आता, सच हमेशा था और है और रहेगा और हमेशा हमेशा तक सच ही रहेगा। हम पढ़ते हैं, हम कुछ आयतें और पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5-7 आयत, पहला यूहन्ना 1:5-7। पहला यूहन्ना 1:5-7, जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं। यदि हम कहें, हम देखिए एक मिनट के लिए यहां रुकते हैं, ये वो कलाम है जो हमने सुना, यूहन्ना कह रहा जो हमने खुदावन से सुना और तुम्हें सुनाते हैं। क्या मैं उन शिक्षकों से पूछता हूं, उन खादमीन से पूछता हूं कि आपने कहां से ये मैसेज सुना, कहां से मैसेज आपको ये मिला, किसने, कौन से बाइबल स्कूल ने, कौन से कॉलेज ने आपको ये शिक्षा दी? और जितने भी खादमीन है, सेवक लोग हैं और सारे संसार में जो पाए जाते हैं, खुदावन ऐसा करे कि वो सिर्फ इस बात का प्रचार करें जो कि हमारे भाइयों ने खुदावन से हासिल किया और खुदावन से हमको मिला। हम सिर्फ उस बात का प्रचार करें, उस बात की शिक्षा करें जो खुदावन ने हमसे कहा। आगे पढ़ते हैं, 6 आयत, पहला यूहन्ना, अब हम 6 आयत पढ़ रहे हैं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सच्चाई पर नहीं चलते। अब फिर यहां रुकते हैं, हम फिर रुकते हैं छठी आयत पे। आदमी ये कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरे पास सच्चाई है, मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, अब मैं तो खुदावन से जुड़ा हुआ हूं, पर अगर कि वो बातें अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, जो सच्चाई में है वो उस अंधकार से, उस गलती से छुटकारा पा चुका है, बाहर आ चुका है, वो कभी भी मिलावट नहीं करेगा, वो हमेशा उस बात को कहेगा जो कि जो आत्मिक सच्चाई है। सातवीं आयत, अब हम सातवीं आयत पढ़ रहे हैं, पहला योना एक, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। खुदावन का बड़ा शुक्र गुजार है, उसका धन्यवाद हो। हम अपने मन से, अपने दिल से इस बात को जानते हैं, जो जो सच्चाई में चलता है, जो ज्योति में चलता है, वो खुदावन के कलाम में चलता है, वही खुदावन के साथ चलता है और उसके पास खुदावन का कलाम है। अब देखिए, बिल्कुल ये समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि हमको व्यक्तिगत शख्सी तौर पर हम खुदावन के कलाम को इस्तेमाल कर सकें, उसको जान सकें, उसका अनुभव कर सकें, उसका एहसास कर सकें। जो सच्चाई को जानता है वही तो स्वतंत्र किया जाता है, वही आजाद किया जाता है उस गलती से। और कलीसिया में जो यीशु की जो कलीसिया है उसमें उसको खुदावन के लहू में गुसल दिया गया, खुदावन के लहू में नहलाया गया, जिससे कि सारे गुनाह साफ, पाक और साफ कर दिए गए, हटा दिए गए और हमने नजात पाई। और देखिए, हम खुदावन के कलाम के द्वारा साफ किए गए, धोए गए, पवित्र किए गए हैं। और दूसरी तीसरी बात, और फिर उसके बाद हम साफ किए जाने के बाद तीसरी बात, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा दिया गया। और ये सारी की सारी बाइबल की बातें हमारे जीवन में जाहिर होनी चाहिए। खुदावन जो है, खुदावन कर रहा है और ये हमारे अंदर खुदावन ये काम कर रहा है कि हम जो जानते हैं, कि हमने जो जाना है कि आज क्या चल रहा है, कि आज यहाँ क्या चल रहा है, हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि ये खुदावन जो है, कि ऐसा ना हो कि खुदावन को हमारे ऊपर भी रोना पड़े कि हमको एक सच्चाई दी गई है, हमको तो इस चीज का भागी बनाया गया है, खुदावन आज क्या कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना दूसरा बाब और चौथी आयत, दो और चार को पढ़ते हैं, पहला योना 2:4। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को यानी कि हुक्मों को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सच नहीं पाया जाता। ये भी देखिए कितनी खास बात है, जो ये कहता है खुदा की बातों के बारे में, उसका क्या फायदा है जब तक के हम शख्सी तौर पे उनका एहसास ना कर लें, उसको अपनी जिंदगी में अनुभव ना कर लें, उसके जो हुक्म है वो मुश्किल नहीं है, पर हम हम देखते हैं अगली आयत में क्या लिखा है कि उसकी जो आज्ञाएं हैं वो खुदा के कलाम से जुड़ी हुई हैं। आठवीं आयत, और उसकी पांचवी आयत पढ़ रहे हैं, पर जो उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आमीन, आमीन। कितनी अद्भुत बात यहां पर कलाम में लिखी है, सिर्फ आज्ञा से नहीं पर इस कलाम से, हम जिस पर हम ईमान रखते हैं, और ये इसीलिए खुदावन का कलाम, खुदा का कलाम हमारी जीवन में पूरा होता है, इसीलिए खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर पूरा होता है, जिसके लिए वो भेजा गया वो मुकम्मल होता है। और मैं जानता हूं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का जो कामिल वचन है, हमने जो इसका जो फाइनल वर्ड है वो हमने रिसीव किया, हमने पाया, हमने ग्रहण किया, हमने हासिल किया, हमारे पास ये आखिरी कलाम है, क्योंकि ये हमें वहां ले जाता है जो खुदावन ने कहा, कि उसने खुदावन ने कहा कि हमारा इस कि जिससे कि हम क्योंकि हमारा हिस्सा उसमें हो, और जिससे कि खुदावन का कलाम हमारे अंदर पाया जाए खुदावन के आने से पहले, और हम उस मोहब्बत में जुड़े रहें और एक दूसरे से जुड़े रहें उसके प्रेम में। अब आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 उसकी छठी आयत, और जो ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। खुदावन के नाम को जलाल मिले, प्रशंसा मिले। जो ये कहता है कि मैं, बहुत सारे कह सकते हैं, ये बहुत क्या क्लेम हो सकता है, जो ये सच्चा सच में कह सकता है खुदावन के नाम को लेकर कि मैं उसके पीछे चलता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं ईमान रखता हूं, और मैं उन वादों पर ईमान रखता हूं जो खुदावन ने कहा, वो तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो वैसे ही चले जैसे हमारा खुदावन चला। और मैं जानता हूं, और ये अभी हो रहा है हम में से बहुतों के साथ, ये हो रहा है उसके फजल से। हम आगे पढ़ते हैं, हम पहला यूहन्ना और उसकी नवी है, पहला यूहन्ना 2:9 को अब हम पढ़ते हैं, जो ये कहता है मैं ज्योति में हूं, अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में है। ये बात भी मेरे भाई और बहनों, एक एक बात को गौर से सुने, एक एक बात एक हथौड़े की तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। अगर हम ये बात क्लेम करें, अगर ये इकरार करें कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, इसका कोई फायदा नहीं। ऐसा होना चाहिए, सिर्फ मुंह के अल्फाज नहीं होने चाहिए, जिससे कि खुदावन का कलाम हमारे अंदर कामिल हो जाए, जैसे कि खुदावन का कलाम हमारे नजात दहिंदा के अंदर पूरा हुआ, ऐसे ही जिन्होंने नजात पाई है इनके अंदर भी खुदा का कलाम पूरा हो। और हम क्योंकि वादा किए हुए फर्जंद हैं, इसलिए हम जानते हैं कि खुदावन ने क्या क्या वादे हमारे साथ किए हैं। हम आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं, जो अपने भाई से प्यार करता है वो रोशनी में रहता है, ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। अब देखिए, इसमें इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ यहां पर बयान कर दिया गया, जो अपने भाई से प्यार रखता है, जो आत्मिक तौर पे सच्चे में अपने भाई से प्यार करता है उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया जाता, वो तो परफेक्ट है, वो अंधकार में नहीं है। पहला यूहन्ना और तीसरा बाब 3 और 7 को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:7, 3 और 7। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आमीन, आमीन। यहां भी एक सच्चाई है, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने हमारे प्रभु को बपतिस्मा दिया। हमारे खुदावंद ने कहा कि ये जिससे कि सारी धार्मिकता पूरी हो जाए, पूरी की पूरी धार्मिकता पूरी हो जाए। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया खुदावंद यीशु के नाम में, उनको ये बात दिल से लगा लेनी चाहिए कि ये हमारे साथ ऐसा होना जरूरी है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें, जिससे कि हम सारी की सारी शिक्षाओं को, उन ट्रेडिशंस को, उत्तरी एकता का फॉर्मूला, ट्रिनिटी का जो बैप्टिज्म है, इन सारी चीजों से हम बाहर आ जाएं, इनको छोड़ दें और पूरी धार्मिकता में, पूरे विश्वास में बने रहें और यीशु मसीह के नाम में, बाइबल के अनुसार खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हमारा हो। और आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:10-12 आयत तक हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:10-12, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आराम से सुना, एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि ये वो सुसमाचार शुरू से हमने सुना कि एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन की समान ना बने, जो शुरू से दुष्ट था, जिसने अपने भाई को हलाक किया, मार डाला। और उसे किस कारण से हलाक किया? इस कारण से कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, रास्तबाजी के थे। ये देखिए, ये वचन भी हम एक बार फिर पढ़ सकते हैं और अपने आप को जाने, जांचें कि हम कहां खड़े हैं। हम ये जांचें कि हम कहां खड़े हैं, हम कैन के जैसे ना बने और कि भाई को कह रहा है मैं तुझे प्यार करता हूं और उसे मार दे, हलाक कर दे, कह मेहरबानी से ऐसा ना करें। जो आत्मिक प्रेम है वो हमारे खुदावन के जो बेटे और बेटियां हैं उनके अंदर पाक खुदावन का कलाम, खुदावन का प्यार जो है वो हम जाहिर होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, ये पूरी की पूरी बहाली का वक्त आ चुका है और हम चाहते हैं सच्चे दिल से कि हम वहां पर पाए जाएं। जब ये खुदावन आता है और खुदावन अपनों को ले जाता है, इसलिए ये गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से इस बात को समझें। एक बार फिर पढ़ें, पहला यूहन्ना 3:14-15 आयत अब हम पढ़ेंगे, 14 और 15। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। ये आज भी हमारे से बात करती है, देखिए। और खुदावन के जो चेले थे वो ये कहते थे कि हम जानते हैं
क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपको ये आश्वासन है क्या हम कि हम मौत से जिंदगी में पहुंच चुके हैं। और जब ये लिखा है अगर हम भाइयों को प्यार करें तब हम ये जानते हैं कि हम आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में, रूहानी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और ऐसा काश ऐसा हो कि हम सबको ऐसा होने, हम सबके साथ ऐसा होने पाए। और काश ये मीटिंग इस काम को कर पाए कि हम अपने आप को जांचें। और क्या, और काश को खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में कामिल और पूरा हो जाए। पहला योना 3:15 को पढ़ते हैं, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हथियारा है, और तुम जानते हो कि किसी हथियारे को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कोई भी हथियारा हमेशा की जिंदगी का हासिल नहीं हो सकता। एक बार फिर कलाम हमारे को बताया जा रहा है, इससे पहले बताया कि हम अंधेरे से जिंदगी में पहुंच चुके, मौत से जिंदगी में पहुंच चुके। आप देखिए, अब आप जानते हैं या आपको पता, जो अपने भाई से प्यार नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, वो हथियारा है। कलाम बोल रहा है, और कोई भी हथियारा खुदावन की हमेशा की जिंदगी में का शरीक नहीं हो सकता। हम नए सिरे से थे पैदा हुए और हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल किए, फिर भी अगर हमको उसमें चलना है, हमको हमेशा की जिंदगी जो मिली है हमें फिर भी खुदावन के कलाम में चलते रहना है और उसको उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को बसर करना है, जिससे कि कलाम हमारे अंदर पाया जाए, कलाम हमारे अंदर आखिरियत तक, अंतिम लहमे तक पाया जाए। ये सारी आयतें ये इतनी सीरियस हैं, गंभीर हैं और संजीदा हैं कि हम अपने मनों में इनको बसा कर रखें। अगली आयत पढ़ रहे हैं, पहला योना 3:18। हे बालको, हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। देखिए यहाँ क्या लिखा है, और खुदावन के नाम को जलाल मिले। ये जो शिक्षा है ये इस बात को बता रहा है कि खुदावन का प्यार क्या है। खुदावन ने अपने इस जहान से ऐसा प्यार किया, मैं बार बार कहता हूं कि खुदावन का जो काम है, उद्धार का काम है, ये तो प्यार से भरा हुआ है। हमारा उद्धार, हमारी नजात, हमारा खुदावन से वापस मेल और हमारा उद्धार, हमारी नजात और फजल, ये सारी चीजें जो हैं, ये प्यार में, ये उस मोहब्बत में हैं, और ये उस मोहब्बत की वजह से हैं जो खुदावन ने हमसे करी। इस मोहब्बत से ही उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, जिससे कि हमको खरीद सके, हमें वापस खरीद सके, हमारा मोल दे सके, और फजल के द्वारा। खुदावन हमको ऐसी हिदायत दे कि हम अपने आप को ढूंढें, हम अपने को ढूंढें, अपने को जांचें कि खुदावन ये बता, तूने आज मुझसे बात करी खुदावन, और तूने अपने कलाम से बात करी, और ऐसा होने दे कि जैसा कि तूने मेरे लिए किया। हम और पढ़ते हैं, पहला योना और 2 और उसकी 28। पहला योना 2:28 को अब हम पढ़ रहे हैं, 2:28 को पढ़ रहे हैं। अतः बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो, तो तुम्हें हियाब हो, हिम्मत हो, हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो, लज्जित ना हो। यहां देखिए यहां एक चेतावनी दी गई है। हमें अपने दिल से इसको सोचना है, हमें ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के सामने शर्मिंदा होके खड़े हो जाएं। कि हम उनमें से ना पाए जाएं, उनके जैसे ना हो जाएं जो पीछे रह जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं हमेशा से कह रहा हूं, ये सच्चाई है, जैसा कि खुदावन ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा और वो कह सकता था, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं पश्चाताप के लिए, तौबा के लिए, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पाक रूह और आग का बपतिस्मा देगा। इसलिए ये जरूरी है कि खुदावन ने भाई ब्रैनम को भेजा, हमारे वक्त में भेजा, और उन्होंने भी पानी का बपतिस्मा दिया। और पहला जो पानी का बपतिस्मा था, जब उन्होंने ये बपतिस्मा दिया, जब उन्हें 17वें आदमी को बपतिस्मा दे रहे थे, जून 1933 में जब वो बपतिस्मा दे रहे थे, तब ऐसा हुआ कि आसमान से अलौकिक आवाज आई और उसने कहा, और बड़े शोर के साथ, पुकार के साथ वो आई और वो आवाज सुनाई दी और वो बात सुनाई दी, जैसा कि खुदावन ने कहा, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावन की पहली आमद की तैयारी के लिए भेजा गया था, उसी तरीके से तुमको भी एक मैसेज, एक संदेश दिया गया है जो खुदावन की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चा होना था, ये कामिल होना था, ये पूरा होना था। मैं ये बार बार कह रहा हूं और बार बार सफाई से कह रहा हूं, जो इस बात में यकीन नहीं करता कि जो खुदावन ने आज अलौकिक तरीके से, अद्भुत तरीके से हमारे सामने किया, और मैंने आपको दिखाया कलाम से, मैंने कई बार फोटोज भी आपको दिखाए, वो सुपरनेचुरल अलौकिक लाइट की फोटो आपको दिखाई, वो जो लाइट थी, वो जो प्रकाश था, जो कि उनके भाई ब्रैनम के सिर के ऊपर चमका, और वो खुदावन की प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को दिखा रहा था, बता रहा था कि जो खुदावन उन सभाओं में, उन मीटिंग्स में मौजूद रहता था, और खुदावन ने उनको आशीषित किया। और देखिए उसने क्या किया, जब वो जमीन पर चलता था खुदावन। मेरे भाई और बहनों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आंखों देखा हुआ कह रहा हूं, मैं भाई ब्रैनम के बारे में ये आंखों देखा गवाही दे सकता हूं कि खुदावन ने इस चीज को पूरा किया, कामिल किया अपने कलाम को, और उसने उन वादों को पूरा किया, और उसने अपने नबी को भेजा। और हम बार बार हम इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदावन के उन सारी चीजों की बहाली हो चुकी है, उन सारी चीजों को वापस उस हालत में ला दिया गया है, और अब और मेरी और आपकी का ये फर्ज है, हम अपने आप को सीधा करें, अपने आप में सुधार करें, जिससे कि हम, और एक बार फिर कहूंगा, और फिर मैं लूका 19 के रेफरेंस से कहूंगा कि किसके लिए खुदावंद रोया, अपने लोगों के लिए, इज़राइल के लिए, अपने बच्चों के लिए रोया, और उसने कहना पड़ा कि क्योंकि तुमने अपने वक्त को, तुमने कितने ईमानदार, कितने विश्वासी जो आज डिनोमिनेशन में पाए जाते हैं, अलग शिक्षाओं में पाए जाते हैं, कितनों के लिए आज खुदावंद को रोना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आज के दिन को, आज के मुकर्रर वादे किए हुए दिन को नहीं पहचाना। और एक बार मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर पूछना चाहता हूं साफ तौर पे, क्या क्या सभी विश्वासी और अनविश्वासियों ने यह नहीं जाना कि क्या हम इस बात को नहीं जानते कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं? और जब हम मत्ती 24 को पढ़ते हैं या मरकुस 13 को पढ़ते हैं या लूका 21 को पढ़ते हैं तो हमको ये बताया गया, हमको पहले से ही बताया गया, 2000 साल पहले बता दिया गया कि क्या होने वाला है, आखिरत में क्या होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये जो अर्थक्वेक आना और ये अकाल पड़ना और ये और बीमारियां आना, ये लड़ाइयां होना और ये लड़ाइयों की अफवाहें आना, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये सब तो है, पर असली बात क्या है? ये जो कलाम है, ये जो संदेश है, उद्धार का संदेश है, खुदावन, ये खुदावन का जो कलाम है, ये सारी दुनिया के कोने कोने में गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा। उसके बाद खात्मा होगा, उसके बाद अंत आएगा। हम तो उस अंत समय में पहुंच गए हैं। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा इसके ऊपर जोर देकर कि हम सब उन सब गलत शिक्षाओं से, उन ट्रेडिशन से बाहर आ जाएं, अपने आप को अलग कर लें, अलहदा कर लें, और वो सारी बातें जो कलाम से मेल नहीं खाती और कलाम में वापस आ जाएं, जिससे कि खुदावन की जो दुल्हन तैयार करी जा रही है वो बेदाग और पाक तरीन हो जाए, बेऐब हो जाए, उसके अंदर कोई गलत और ऐब ना पाया जाए। और फिर हम इंसानों में ये बड़ी असंभव बात लग चुकी है, पर ये लगता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, पर खुदावन के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। हम देखिए मकाशवा 14 में लिखा है कि ये जो उद्धार का जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये जो 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 कलीस जो कलीसिया, ये नहीं कि जो बोला जा रहा है ये इस उस चर्च में बोला जा रहा नहीं, या इधर उधर बोला जा रहा, वो नहीं, ये कलाम जो खुदावन का नजात का जो कलाम है, ये वो कलाम है, ये बोला जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है सारी जुबानों में और सारे लोगों में, और लोग अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं और सुधार पा सकते हैं और फिर खुदावन में वापस आ सकते हैं और अपनी तैयारी को कामिल कर सकते हैं। अब यह कहकर बंद करूंगा कि जब खुदावन ने मुझे जो सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस दिए, जो अनुभव दिए रैप्चर का, उसमें रैप्चर जो था वो एक ऐसा अनुभव था जो मेरे लिए बड़ा अद्भुत था, जो प्रभु ने मुझे दिया, जब मैंने देखा कि सफेद पोशाक में सफेद 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 पोशाक में अनगिनत लोग थे, सिर्फ वो सफेद कपड़े ही नहीं थे और उनके पोशाक, उनकी अपीयरेंस, उनकी शख्सियत वो चमकदार थी, जो खुदावन के दुल्हन की कलीसिया को बिलोंग करते हैं। प्लीज इस बात को का ध्यान रखें, इस बात पे ईमान रखें और इस कलाम को उद्धार के इस कलाम को संदेश को रिसीव कर लें। हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं उस सेवा के लिए उसने भाई ब्रैनम को दी है, खुदावन को बड़े धन्यवाद दिए, शुक्र करते हैं कि उनके जाने के बाद ये कलाम आज भी ये लगातार भेजा जा सका, बोला जा सका। और अब जब खात्मा आएगा, अंत समय नजदीक आ चुका, किसी को दिन और घंटे का पता नहीं, पर प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है और प्रभु बता रहा है जब, और वो कह रहा है जब तुम इन सारी बातों को होता हुआ देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी नजात और तुम्हारा उद्धार बिल्कुल निकट है। और मुझे अब ये कह के मैं समाप्त करूंगा और बड़े दुख के साथ के जो खुदा के उस वादे को छोड़ जाता है, नकार जाता है, उसे दूर रह जाता है, महरूम रह जाता है, वो चाहे रैप्चर के बारे में जो मर्जी कुछ कहता रहे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बोलता रहे, वो बड़ा निराश होगा, वो बड़ा लज्जित होगा, क्योंकि उसने अपने वक्त के उस अनुग्रह को, खुदावन की उस मुलाकात को, खुदावन के उस विजिटेशन को से वो महरूम रह गया, नहीं समझ पाया, उसने नहीं माना, उसने नहीं रिकॉर्ड, और वो उन शिक्षाओं से बाहर नहीं आ पाया, वो उनमें फंसा रहा, उस बेबीलोन की जो शिक्षा थी उसमें घुटता रहा और उसमें उसके दासत्व में रहा। और फिर हमको खुदावन का धन्यवाद इसलिए करना है, और हमें ये पता है कि वो तो बहुत जल्दी आ रहा है, और हम उसके आने की हम बाट जो रहे हैं, और हम अपने वक्त में उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत आशीषित हों, बहुत बरकत पाएं, और खुदावन की सारी बरकत और आशीषें खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको मिले। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब हम खड़े होते हैं दुआ के लिए, और भाई दुआ करेंगे, दादा बहुत दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना अद्भुत कलाम दिया, क्यों हमने आज सुबह सुना, तूने हमारे मनों से बात करी, हमारे दिलों से बात करी, और हम ये दुआ करते हैं अपने लोगों की सहायता कर, मदद कर, कि वो इस बात को समझ सकें कि हम कौन से दिन में, हम कौन से दिल में, जो तूने संदेश हमको दिया और इस वक्त में तूने एक नबी हमारे लिए भेजा हमारे दिल, हमारे इस वक्त में, और वो सारी की सारी जो मिस्ट्रीज थी, सारे के सारे भेद थे, वो खोल दिए गए, और ये सारे खोल दिए गए, और हमारी आंखों को खोल दिया गया, और हमारे कानों को खोल दिया गया, और हमारे मनों को खोल दिया गया। खुदावंद, हम तेरा शुक्रगुजार हैं इस सरमन के लिए जो आज इतना संजीदगी वाला सरमन था। हम तेरे कलाम को मानते हैं और जानते हैं, और जो जिन्होंने आज सुबह इसको सुना, और हमारे सारे भाई और बहनों को बरकत दे जो सारे संसार में पाए जाते हैं। हम तेरे कलाम के लिए खुदावन के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।